السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر صحت اور عافیت کے ساتھ اس بات کے لیے جمع کیا اور ہم اپنی اپنی جگہوں سے بیٹھ کر سچی خوشیاں پانے کی کوششوں میں ہیں. خوشی کا راز کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پہ راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے. خوشی غم ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشی کے جو راز رکھے ہیں اس میں سب سے بڑا راز تو اللہ کا شکر گزار بننا ہے, جو ہے اس پہ راضی رہنا ہے, اور جو نہیں ملا اس کے اوپر قناعت کر کے مطمئن رہنا ہے. ہم نے ایک سیشن پیچھے سے لیا اور اس میں ہم نے جنرلی دیکھا کہ نعمتوں کو انجوائے کرنے کا نام خوشی ہے, رشتوں کو نبھانے کا نام خوشی ہے, عبادت کریں تو دھیان اللہ کی طرف ہو, معاملات ہوں تو لوگوں کی طرف دھیان ہو, نہ کسی کی حق تلفی ہو, نہ آپ کسی کو دکھ دیں نہ کوئی آپ کو دے, لا درر ولا درار ہو. اور حقیقت ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان مطمئن رہے اللہ تعالیٰ اس کو سچی خوشیاں دیتا ہے. اور مجھے تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ خوشیاں دینے والوں کو ہی خوشیاں ملتی ہیں. جو دینے والا ہے وہی پانے والا ہے. اللہ نے خوشی کو اس طریقے سے رکھ دیا ہے کہ آپ دوسروں کو دیں تو جواب میں پلٹ کر وہ ضرور آپ کے پاس آئے گی. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا یعنی نیکی کا, اچھے معاملے کا بدلہ بھلا اچھے معاملے کے سوا پھر اور ہے بھی کیا. تو اللہ کرے کہ ہم ان سارے رازوں کو سمجھتے جائیں اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے. آج سے کوٹس شروع کروں گی, کچھ کوٹیشنز جو ہم نے الحمدللہ ڈونٹ بی سیڈ غم نہ کرو بک جو آلموسٹ ہماری 32 ڈیز میں پوری ہوئی تھی, وہ تو ایک لانگ ٹرم خوشی تھی, غموں کو دور کرنے کا نسخہ تھا. سوچا کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اتنا وقت سنیں اتنا لگائیں, تو یہ ایک شارٹ ورژن خوش رہنے کے قاعدے سیکرٹس آف ہیپینس کے نام پہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ تھوڑے ہی وقت میں وہ سارے کوڈ ورڈز پا لیجئے جس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر بات سنتے وقت آپ کو اپنے بڑے ضرور یاد آئیں گے, کیونکہ ہمارے فور فادر جس کے اندر ہمارے ماں باپ, ہمارے دادا دادی, نانا نانی, اور اسی طرح سے بعض لوگ اپنے ساس سسر کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں, ان کی باتیں بڑی خوبصورت تھیں. وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, بہت بڑی ڈگریز نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں, کوئی بہت بڑے بیج آف آنرس نہیں تھے ان کے کندھوں پہ, لیکن دیکھا گیا کہ وہ لوگ باتیں بڑی پتے کی کرتے تھے. تو آپ ان کو اقوال زری بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو بہترین خوش رہنے کے راز بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے پیارے نبی کو اتنی مشکل گھڑیوں میں کہی کہ جب غار میں ہیں, دشمن پیچھے ہے, آگے کا راستہ نہیں بتا ہونے کے حوال ہے, تو اس وقت جب اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق کا وہ مکالمہ جو ہم سورۃ توبہ آیت 40 میں بار بار ہی پڑھتے سنتے آئے کہ جس میں کہا گیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اور ہم سب کو بلکہ یہ کہہ دیا گیا اور اس دور کے لوگوں کو خاص طور پہ کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذھما فی الغار. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کفار نے ان کو نکال دیا تھا اور جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا, یعنی ایک ابو بکر صدیق تھے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل فرمایا, یعنی سکینت نازل فرمائی, سکون قلب نازل فرمایا, اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور کافروں کا بول نیچا کر دیا, اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا و بینا ہے. تو ہم اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں اور آپ اس کو بس اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لکھتے جائیے. آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا ہر دور گزر جاتا ہے, اس لیے بہت زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. تو چلیے ڈفرینٹ سیکرٹس جو لیں گے راز, گنتی آپ کیجئے گا, میں شروع کرتے وقت ایک دو کے نمبر بول دوں گی. کوشش کیجئے گا کہ ہر سیکرٹ کے ساتھ 1 2 3 لگا لیجئے. تو پہلا سیکرٹ کیا ہے کہ گزشتہ کل ختم ہو چکا ہے, آج کا جو دور ہے آج موجود ہے, آئندہ کل آنے والا ہے. اگر آپ ان تینوں کو ایک نشست میں ایک ہی ساتھ دیکھ لیجئے تو کل تو چلا گیا, अब आप उसका गम मनाएं, आप उसकी खुशियां मनाएं, आप उसके रोने रोएं। चला गया, आज चल रहा है। टुडे इज प्रेजेंटेड बाय अल्लाह सुब्हान तआला। आइंदा कल आने वाला है, क्या पता आज शाम का सूरज हमारे साथ भी ग़ुरूब हो जाए और हमारी ज़िंदगी का सूरज भी ग़ुरूब हो जाए। तो क्या आप और मैं सिर्फ उस आने वाले कल, जिसको ना मैंने देखा ना आपने देखा, और पता नहीं देखना भी है कि नहीं देखना, क्या उसके गम में हम गुजार देंगे? और जो कल चला गया, जिसका सूरज डूब गया, तो आप और मैं क्या उसके पीछे रोएंगे? नहीं, हमारे पास आज ही तो है, इसलिए इसे इतात में लगा दो, बहुत ज़्यादा नफ़ा मिलेगा। क्योंकि जिसको ये राज मिल गया, ये वो सीक्रेट है जिसको पाने के बाद बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है। कल गया, अगला कल देखा नहीं, लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि जो हाथ में है उसकी फ़िक्र करो। इस आज को मना लीजिए। बहुत ही ना समझ लोग हैं जो इस बात पे रोते रहें कि कल क्या और परसों क्या था, क्या और होगा क्या, और आज जो है उसको भूल जाए। देखिए, आपको भूख लगी है, बिलफर्ज इमेजिनेशन में लाएं, कल आपने दाल पकाई थी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, गुजर गई। कल के लिए आपने मुर्गी को मसाला लगाया हुआ है जो बाहर लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कल आप रोस्ट बनाएंगे, साथ बिरयानी बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। कल दाल पकी थी, कल मुर्ग मुसल्लम बनेंगे, भूख आज लगी है, क्या करें आप? कल की दाल का रोना रोएं या फिर अगली बात सोच लीजिए। आपको मुझे ना तो कल की दाल का रोना फायदा देगा, ना मेरा उससे पेट भरेगा, ना कल जो बिरयानी बनने वाली है उसकी खुशी होगी। मुझे तो ये देखना है कि आज मेरे किचन में क्या है। कुछ फ्रिज में रखा है, कल की दाल बची है, देखिएगा आपको वो भी अच्छी लगेगी अगर आपको भूख लगी हुई है। आप अचार के साथ रोटी ले लें और आप खुशी के साथ खाकर देखें, आपको ऐसे महसूस होगा कि हकीकत ये है कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो फिर लिख लीजिए अपने लिए बात, आज से खुशी का एक बहुत बड़ा राज आपको मुझे ये मिल गया। कल का गम ना कीजिए, आने वाले कल की इंतज़ार में आज के दिन को ज़ाया ना कीजिए। आज आज और आज। और इस पे हमने एक सीरीज़ की थी बुरी टाइम मैनेजमेंट की, मुझे याद आ रहा है एक लेसन पूरा सेशन आज पे था, और उसको लिखा था आज, एक बहुत बड़ा आज। 24 घंटों का है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे अल्लाह ने स्लॉट्स दिए, 24 घंटे, फिर 24 घंटों में हर घंटे के अंदर 60 मिनट, फिर हर एक मिनट में 60 सेकंड। कितनी छोटी छोटी अलमारियां हैं आपके पास, बस इसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की दात में लगाइए। जो नेकी आज कर सकते हैं ना वो ले लीजिए, आज की नेकी को कभी कल पे ना डालें, और जिस गुनाह से आज बच सकते हैं बच जाइए। बस आप देखेंगे कि आप सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। और जो ही आप मिसाल वही ले लीजिए कि भूखे थे और आपने खाना खा लिया ना, अब आपके लिए कल की दाल भी बराबर और कल आने वाली मुर्गी भी बराबर। मिसाल है कि आपने अच्छी तरह से खाना ले लिया, खा लिया, चटनी ली, अचार लिया, जो भी दाल सा खाया, चाय का कप लिया, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह फील करते हैं कि आई एम फाइन, सेचुरेटेड है, नुक है आपके लिए ये, ठीक है जी। अब कोई आपसे कि कल ये पकेगा वो पकेगा, आप क्या फील करेंगे? भाई नहीं, अभी मेरे सामने नाम नहीं लो, मुझे बिल्कुल तलब नहीं। जब आपका पेट भर जाता है ना, तो आप यकीन कर दीजिए कि वो चीज़ जो आपको बहुत बड़ा एक ख्वाब और एक ड्रीम दिखती है ना कभी, वो बेकार लगने लगती है। तो बस बात मुझे लगता है कि आसानी से समझ आ गई है। जिसने आज से फ़ायदा उठा लिया ना, तो वो फिर पीछे और आगे नहीं जाएगा, इंशाल्लाह इस पे आप राज़ी रहें। अगला सीक्रेट लीजिए, कलम तुम्हारा साथी है, किताब आपकी दोस्त है, घर आपकी ममलिकत है, आपका मेरा ख़जाना जिसको ट्रेजर कहेंगे ना, वो हमारी रोज़ी है, इसलिए जो गुज़रा उस पर अफसोस ना करें। देखिए ना, अगर आप पढ़ने लिखने वाली शख्सियत हैं, आपको कलम बहुत कीमती लगेगा ना। आपके घर में कुछ और हो ना, लेकिन कलम किताब तो ज़रूर होंगी ना। और वाकई जिसके पास जज्बात हों, कुछ कहने को है, कुछ इल्म है जो शेयर करना है, सिर्फ कलम और कागज़ हो ना, तो अपना सारा जहन सफ़े किरतास पे मुंतकिल कर सकता है। अब बाद में कोई उसको बोल के बता दे, कोई सुन ले, कोई लिख दे, कोई जेम्स बना दे, वो दे चुका, और जिस घर में आप हैं, मैं हूँ, चाहे वो एक कमरे का घर है, एक इनाल का घर है, ये इससे ज़्यादा आपकी बादशाहत है। चाबी आपके पास है, खोल के आते हैं, चाबी ये बंद, आप साफ करें ना करें, आप उसके अंदर फूल लगा दें, पत्तियाँ लगा दें, आप मलकियत हैं। देखिए ना, आप अपने आप को सोचिए, आप किस मुल्क में इस वक्त। माशाल्लाह, आप में से हर एक मुख्तलिफ जगह से सुन रहे हैं ना, क्या पाकिस्तान समेत अमेरिका, कनाडा, यूके, नॉर्वे, पेरिस, जर्मनी, और इसी तरह से आप ले लीजिए चाइना, जापान, क्या आप उनके मामलात को बदल सकती हैं? आपकी कोई मर्ज़ी चलती है अमेरिकन गवर्नमेंट में? आपका कोई इख्तियार है ब्रिटिश गवर्नमेंट में? नहीं है ना? हाँ, मेरा अपने घर में इख्तियार पूरा है। बस ये है आपकी खुशी, इंजॉय योर होम। आज आपको अल्लाह ने अगर एक घर दिया है तो क्या हुआ? रात को किसी के बारे में बात हो रही थी, होमलेस पर्सन जिसके पास घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक मस्जिद में आकर अपनी चीज़ें छुपा के कोई रख देता है और उस पर ही मसला बन जाता है और परेशानी होती है उनको कि जी ये आता है और रातों को ये करता है। तो मेरे सामने कोई बात कर रहे थे लोग, तो मैंने कहा सुने, होमलेस है ना, किधर जाए? कुछ तो उसके पास चार चीज़ें होंगी ना जीने की। तो अगर वो मस्जिद के कोने में आके छुपा जाता है तो क्यों ना मस्जिद वाले उसको एक छोटा सा बॉक्स ही दे दें, लो भाई इसमें रख के वो कोने में रख लो। जब घर नहीं है, जब उसके पास कुछ नहीं, कोई तो इंसान की ज़रूरत की चीज़ होती है ना, तो उसको इस्तेमाल करने दें तो वो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं, बिलीव मी, जिनके पास घर छोड़िए कमरा भी अपना नहीं है, चाबी नहीं है कि जो चाबी लगा कर खोले। आप ज़रा अपने घर की चाबी को मोहब्बत से देखिएगा कभी, ये आपके लिए एक शाही चाबी है कि आप खोल के तो अंदर घुसे, ना फिर चोरी का डर, ना चिकारी का, और ना पुलिस का डर कि आप किधर, कोई आप पे दावा नहीं कर सकता। और घर बहुत बड़ी नेमत है, तो आप क्यों दूसरी चीज़ों पे कुड़ते और जलते और खपते हैं? आप इस पे खुशियाँ मनाएं। अल्लाह ने जो दिया, जो गुजरा, उस पर अफसोस ना कीजिए। आज जो मिल रहा है, आज जो अल्लाह ताला ने दिया है, इसको इंजॉय कीजिए। बस इंजॉय योर होम, इंजॉय योर लाइफ, थोड़ी चीज़ें हैं तो भी खुश हैं। आप कहें कि मैं तो इसकी भी काबिल नहीं थी, अल्लाह ने आपको मुझे इतना कुछ दिया। चलिए, पिछला किया अगला देखा नहीं, आज को अल्लाह की तात में लगाइए, नफ़ा दीजिए, लीजिए दीजिए, किसी भी वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी ज़ात से किसी और को फ़ायदा हो रहा है, और कुछ नहीं ना तो दूसरों को अपने ज़रर से बचा लीजिए। इस वक्त भी अगर आप किसी को फ़ायदा दे रही हैं ना, किसी भी सेंस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका आज बहुत ही नफ़े में है। दूसरी चीज़, जो गुजरा इस पर अफसोस ना करें। कागज़ कलम पास है, घर आपका है, इसको एंजॉय कीजिए। बस हमारा ख़जाना हमारी रोज़ी है। फ्रिज में अगर कुछ दूध रखा हुआ है, अगर कुछ गोश्त रखा हुआ है, थोड़ा सा आटा चावल है ना, तो आपका ख़जाना है। आप आटा गूंदिए, रोटी बनाइए, चावल धोइए, चाहे आप मीठे पकाएं, फीके पकाएं, नमकीन पकाएं, आपकी बादशाहत है। इंजॉय क्या करें? कभी कभी कहा करें, मैं अपने घर की मलका हूँ, मैं अपने घर की वज़ीर आज़म हूँ, मैं अपने घर का सदर हूँ। इंजॉय कीजिए। बड़े मुल्क का बन के आपने ज़रूर लोगों की भी बातें सुननी है और ख़ुद भी दुखी होना है। तो हम बड़े बड़े रुतबों की फ़िक्र करते हैं और उसी में अपने जो छोटी छोटी अल्लाह ने हमें खूबसूरत सी नेमतें दी होती हैं, उसको इंजॉय नहीं करते। चलिए, थर्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हो सकता है कि शुरू में आपको तकलीफ़ हो। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का आगाज़ तकलीफ़ वाला होता है। शादी होती है, शुरू के दिन बड़े तलख होते हैं। कई लोगों का बचपन बुरा होता है, माँ बाप फौत हो गए, कोई एक चला गया, गुर्बत हुई। हो सकता है कि शुरू में आपको तकलीफ़ हो, लेकिन आखिर में खुशी हो जाए। जैसे बादल के शुरू में कड़क होती है ना, लेकिन आखिर में बरखा आती है। लिखिएगा, एंड वेल इज़ गुड वेल। मैं अकवाल कुछ पढ़ रही थी इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह और इब्ने कय्यम के, कि अपने आप को हमेशा जो चीज़ अल्लाह ने दी है ना, उसको देखकर खुश हुए, और आखिरी घड़ियों में जो इबादत कर लेता है ना, वही काम में आती है। तो एंड अच्छा कीजिए, मत मासी पे कुड़िए, मेरे साथ ऐसा हुआ, पैदा हुई तो मेरी माँ फौत हो गई, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरी माँ तो बड़ी ही सख्त थी और ये थी और वो थी। नहीं, आप ज़िंदगी को इंजॉय कीजिए और एंड की दुआ कीजिए। आप सारा दिन किचन में काम करें, लेकिन एंड पे बेकार किस्म का खाना बना लें और बाद में कहें कि मैं तो सारा कुछ ही ये इसलिए हूँ, ये वो है, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बात ये होती है कि एक इंसान हमेशा अपने आप को इन चीज़ों में रखे कि मुझे एंड्स को देखना है। अगर आपका मेरा इंजाम अच्छा है तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको मुझे बहुत कुछ दिया। इब्ने जौज़ी रहमहुल्ला कहते हैं, बेशक घोड़ा घुड़ दौड़ के आखिरी मरहले में अपनी कोशिश की आखिरी हद लगा देता है ताकि सबसे आगे निकल सके, पर तो घोड़ा तुमसे ज़्यादा समझदार तो नहीं है? यानी जैसे रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ होती हैं ज़िलहज की, तो कोशिश किया करे कि आखिरी लम्हों में रिलैक्स होने की बजाय मज़ीद खैर करें। और इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का कॉल क्या है, कहते हैं कि इबरत इंजाम के कमाल में है, ना कि आगाज़ की कमी में। आप कोई काम नया नया शुरू करें ना, शुरू में बहुत ही कमियाँ रहती हैं। जैसे कोर्सेज़ होते हैं, पहले पारे में समझ ही नहीं आ रही होती, वो कहते कोई बात नहीं, एंड देखो कैसा ही नहीं। अगर एंड तक भी तुम उसी तरह ही चल रहे हो तो फिर ये बात गड़बड़ होगी। और इसी तरह से इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला, उनकी तरफ भी कुछ अक़वाल जो है वो मंसूब किए जाते हैं, ज़रूरत इस बात की कि आप और मैं अपनी फ़िक्र करें और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें। फिर अगला सीक्रेट लीजिएगा कि इस्तिग़फ़ार से दिलों के कुफल खुल जाते हैं, शरह सदर होता है और परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, वो रोज़ी की खिड़की और तौफीक का दरवाज़ा है। बहुत ही प्यारा कोट है, यानी इस्तिग़फ़ार लिखिए बड़ा सा बीच में, उसके एक तरफ लिखिए रोज़ी की खिड़की और एरो लगा दीजिए इस्तिग़फ़ार की तरफ, यानी रोज़ी खुलती है। और अल्लाह ने कुरान में कह, अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मल लज़िम अल इस्तिग़फ़ार जाल अल्लाह लहू मिन कुल्ली दीक़िन खरजं व मिन कुल्ली हम मिन फरजन व यरज़ुक़ मिन हैसु ला यहतसिब। और सूरत तलाक में और आगे भी ये चीज़ मौजूद है कि इस्तिग़फ़ार से रिस्क मिलता है और तौफीक का दरवाज़ा है। देखिए, जो हमें नेकियों की तौफीक कभी मिलती है या कम मिलती है या बहुत मिलती है ना, इसका इस्तिग़फ़ार से बहुत ताल्लुक़ है। कभी आपके सामने कोई नेकी आए, आती हैं दिन रात आती रहती हैं माशाल्लाह, हम तो ओवरलुक करना, ना ना मैं बहुत बिज़ी हूँ, आई एम ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड, या मैं तो पहले ही बहुत बिज़ी हूँ। आपके सामने जब ज़िंदगी में कोई नेकी का मौका आ जाए, अस्तग़फ़ार शुरू कर दें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो तौफीक के दरवाज़े खुलते जाएंगे। क्योंकि अल्लाह से अब हमने तौफीक मांगनी है। अल्लाह ने मुझे आपको जो दे दिया, ज़रा आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं? एक कार्ड हम घुमाते हैं तो हमारे हाथ में हज़ारों की चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप देखिए उसी इस्तग़फ़ार के तीसरी तरफ एक और लाइन खींचिए, शरह सदर मिलता है, दिल खुल जाता है। कई दफ़ा आप कहते हैं अंदर बहुत है, बोला नहीं जाता, घुटा जाता है, ज़ुबान नहीं खुलती, तो रब इशराह ली सदरी, तो शरह सदर का ज़रिया इस्तग़फ़ार है। एक और एरो लगाइए, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। एक इस्तग़फ़ार से चार आपने सुन ली, पाँचवीं भी सुन लीजिए, दिल के कुफल खुल जाते हैं। अब मुझे बताइए कि आपको मुझे इस्तग़फ़ार से कभी भी गाफिल होना है? कभी भी नहीं। इस्तग़फ़ार से दिलों के कुफल खोलिए। एक जुमला बहुत ही मैं बोलती हूँ, मुँह से ही निकल जाता है, कि अल्लाह में खैर की चाबियाँ और शर के ताले बना दे, तो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़िए। दिल के बंद दरवाजे खुलते हैं, देखिए दूसरों के भी खुलते हैं, आपके इंसानी ताल्लुकात में दूसरों के साथ खटपट रहती है, कुछ भी है, उसको भी के इस्तग़फ़ार करें। बच्चों से कहा करें, बेटा इस्तग़फ़ार करो, बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा, बेटी बात नहीं मान रही, बेटा नहीं मान रहा, उसको को बेटा इस्तग़फ़ार करो। और शऊर के साथ कम अज़ कम, देखिए ना इस वक्त मैंने आपको पाँच चीज़ें बोली हैं ना, दोहरा देती हूँ, दिल का कुफल खुलेगा, शरह सदर होगा, परेशानियाँ ख़त्म होंगी, रोज़ी की खिड़कियाँ खुल जाएंगी और तौफीक के दरवाजे हैं। तो क्या दिल नहीं चाह रहा कि पूरा वक्त इस्तग़फ़ार ही करते रहें? अमूमन यही तो तीन चार हमारे रोज़मर्रा के गम होते हैं। चलिए, ये तो पांच चीज़ें थी, अगला सीक्रेट लीजिए, छह चीज़ें अच्छी और काफ़ी हैं। नंबर एक, दीन, इल्म, गिना, मुरव्वत, अफ और आफियत। दीन तो सबको पता है, बहुत अच्छी चीज़ है, जिसका दीन अच्छा उसका सब अच्छा। दूसरी बात, इल्म बहुत अच्छा है, अगर आपको इल्म मिल गया तो ये आपके लिए अच्छा भी और काफ़ी भी है। गिना क्या होता है? दिल की सखावत, ये नहीं कि घर बाहर तक भरा पड़ा है और दिल में हौका है, छोटी छोटी बात पे मरते हैं। आपको अल्लाह ने गिना दिया है, कनात जो है उस पर राजी रही है, तो गिना, गिना कहते हैं जिसको, हमारी जबान में कहते हैं दिल का बादशाह, दिल का सखी। हमारे एक ब्रदर है, वो बड़ी प्यारी दुआ करते हैं अक्सर, कहते हैं अल्लाह अगर माल उस्मान गनी जैसा दे ना, तो दिल भी उस्मान जैसा दे। और जो देते हैं ना, उनका दिल और खुलता है, और जो घुटता है ना, उनको माल के साथ और घुटन होती है। लोग अमूमन ये सोचते हैं कि पैसे वाले माल देते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो मैं उन्हें कहती हूँ ऐसा गलत फहमी है आपकी, पैसे वाले नहीं देते माल, दिल वाले देते हैं, जिसके दिल को बात समझ आती है। हमारा तो दिल नहीं करता दुनिया से अपनी कोई चीज़ छोड़ने को। अगर हमें मौत के वक्त भी मौका मिल जाए ना कि चलो अभी किसी को कुछ दे दो, तो हम कहेंगे नहीं डॉक्टर पहले ये बताओ मैं मर तो नहीं जाऊँगी, वाकई में मर रही हूँ, जिंदा हो जाऊँगी अगर रह गई नहीं। इतना हौका होता है हमें अपने माल का कि हम कहते हैं अगर जिंदा रह गए तो कहाँ से खाएंगे, हमारा नबी कहाँ से खाते थे, उनके कितने घर थे, कितना उनके बैंक में बैलेंस था, उनकी हर महीने कितनी पे लगी हुई थी, उनको गवर्नमेंट से क्या पेंशन मिलती थी। जब तक मेरा दिल अपने कल से बेनियाज नहीं होता, सच्चा दीन आपके मेरे अंदर आ नहीं सकता। फिर देखिए मुरव्वत कितनी प्यारी चीज़ है। मुरव्वत असल में ना बहुत ही डेलिकेट लफ्ज़ है, इसको एक लफ्ज़ में नहीं हम समझ सकते। बस ये कि मुंह फटना हो। बाज़ दफ़ा लोग ओवर कॉन्फिडेंट होने के नाम पे, बाज़ दफ़ा दूसरी चीज़ों में पढ़ कर बदलिहाज होते हैं। आजकल भी कुछ बदलिहाजी आ गई, ख़ास तौर पे इस लॉकडाउन में। मुंह भर कर किसी को कह देंगे आप तो बीमार हैं, अच्छा आप फिर पीछे ही रहिए, अच्छा आपको तो जरासीम लगे हुए हैं। फिर ऐसे यकीन करें, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करने लग जाते हैं कि फील होने लगता है हम खुद जरासीम हैं। किसी ने हमें टच कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हाथ मिला लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो याद रखिए, तैयारी कीजिए, ये नहीं है कि आप खौफ में वक्त से पहले ही मर जाएं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अफ अफ के मिट्टी डालो, जाने दो। जिसने भी मुझे खपाया, रुलाया, जलाया, दुखाया, तकलीफ़ दी, करने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अफ वाला लफ्ज़ इतना प्यारा है ना कि अगर इस पर सिर्फ बात शुरू कर दी तो बात लंबी ना हो जाए। लेकिन बस पीछे ना पड़े चीज़ों के, जाने दें, दिल हल्का रखें, रिश्तेदारों से, प्यारों से, साथियों से, दीन का काम करने वालों से हमेशा ये कहा करें कि मैंने आपको माफ़ किया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप देखेंगे कि इसके बाद दिल में जो एक ठंडक आती है ना, हर चीज़ में दिल बेनियाज़। किसी कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, किसी को बुलाना है, मिट्टी डालो, ईजी गोइंग, रिलैक्सिंग। अपने घर वालों से पूछा करें, मैं बहुत बाल की खाल तो नहीं खींचती। अब देखिए कुछ लोग बड़े मुखलिस होते हैं लेकिन लोग उनको पसंद नहीं करते, वजह यह कि वो पीछे पड़ जाते हैं, वो बाल की खाल खींचते हैं, वो लोगों के फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं, सरासर फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनकी मौजूदगी में खिंचते हैं क्योंकि वो बहुत पीछे पड़ जाएंगे और फिर वो ऐसे कर देंगे और वो कर देंगे और दिस और दैट होगा। तो हमेशा से अपने आप को रिलैक्स रखा करें। वो बंदा जिसके साथ मामला हो और वो आपको अच्छा महसूस कराए तो वो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और आफ़ियत तो फिर आफ़ियत है, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से आफ़ियत मांगिए। चलिए नेक्स्ट जेम, जो कि मुझे लगता है कि सारे ही जेम्स में से खूबसूरत है, और वो क्या है? कौन है जो मुस्तर की पुकार को सुने, डूबते फरियादी को बचाए और हमें तकलीफ़ों से निजात दे? और वो क्या है? अल्लाह अल्लाह। अम्मै युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सुअ। अल्लाह ताला ने सूरत नमल में 20वें पारे की शुरू की आयात आप खोल के देख लेंगे तो आपको ये राज मिल जाएगा। आज आज ये राज पा लीजिए। आप कितने भी मुस्तर हैं, कोई आपकी पुकार नहीं सुन सकता अल्लाह के सिवा। आप डूब रहे हैं, फरियादे करें, बचाओ बचाओ मेरी जान छुड़ाओ, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचाएगा। किसी तकलीफ़ में, दुख में, सांस रुक रहा है, खांसी है, बुखार है, ज़ुकाम है, घबराहट है, एक पुकार दीजिए, या अल्लाह। ये इतना बड़ा राज है कि आपको ऐसे लगेगा मैंने उसको पुकारा जो मेरा काम कर सकता है। देखिए इसको समझिए, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, 911 सबको नंबर पता है, अमेरिका में रहते हुए खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आप 911 कॉल कीजिए। आपको ज़रा सी तबीयत में घबराहट महसूस हो, आप एम्बुलेंस का नंबर बोल दें। एक और नंबर होता है, आग लग गई तो पुकारें, क्या ये 24/7 अवेलेबल है? और कॉल करने के बाद भी कब आते हैं आपको क्या पता, हो सकता है संडे हो सकता है लॉन्ग वीकेंड हो सकता है रात का वक्त हो, कि जी हम तो सुबह 8 बजे ही आएंगे। एक हस्ती ऐसी है जो दिन रात आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है और वो लफ्ज़ अल्लाह है। तो आप देखेंगे कि सच्ची खुशी आपको मिलती है रब को पुकार कर, कि मैं इधर उधर वालों को क्यों पुकारूं, मुझे तो अपने रब को पुकारना है। तो फिर आपने एक और बात सीखी, हर दुख दर्द का शिकवा शिकायत अल्लाह के आगे, यही है इन्ना माशकु बसी व हुज़नी इलल्ला। अगली चीज़, ये भी बहुत बड़ा राज है, बेफायदा बहस से, यानी अबस बेकार नादान दोस्त से दूर रहिए, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाता है, इसकी तबीयत चोर और आँख सरका करने वाली है। देखिए बेफायदा बातें जब आप करते हैं आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। आप जब लग गुफ्तगू करते हैं ना, आप इतने खुल जाते हैं बाद वक्त कि बहुत ही बेहूदगी में चले जाते हैं। और इसी तरह एक नादान से दोस्त की सोहबत में आप बैठेंगे ना, आफ्टर ऑल आपका नुकसान ही होगा। आपने सुना होगा कि एक शख्स सो रहा था, दोस्त से कहा कि मैं सो जाता हूँ, तुम ज़रा हिफाजत करना मेरी, फिर मैं उठ जाऊँगा तो तुम फिर सो जाना और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। और उस दोस्त की आँख कब खुली? जब उसके मुहाफिज नुमा दोस्त ने उसके नाक पे बड़ा सा पत्थर मारा। क्या हुआ? खून निकल रहा। वो मक्खी बैठ गई थी तो मैंने कहा कि मक्खी उड़ा दूँ। तभी तो कहते ना कि आप जैसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। ऐसे लोगों की सोहबत से खुद को दूर कीजिए जो आपको नादानियों में ले जाए। अभी आपको शायद ये बात ज़्यादा नहीं समझ आएगी, लेकिन आप थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छी समझ आएगी कि दोस्त कैसे लगने चाहिए। आप जैसे दोस्तों में बैठेंगे ना, आपको वैसे ही होगा। अच्छा, ये जो बात है ना कि उसकी तबीयत चोर है, नादान दोस्त जो होता है ना, असल में वो कोई ना कोई चीज़ आपकी चुराना चाहता है, और कुछ नहीं तो आपको बोझल कर देगा, बुरी खबरें सुना सुना के। और सरेका भी चोरी कोई कहते हैं ना, बेसिकली मुराद ये है कि आपके ऐप टटोलता है, गलत चीज़ों में ले जाता है। फिर अगला जम लीजिए कि बात को ढंग से सुनना, कतई कलामी न करना, आहिस्ता से गुफ्तगू करना, अखलाक से पेश आना। चार चीज़ें बोल देती हूँ। कोई बात करे ना, ढंग से सुनिए। बस लोग आधी बात सुन के बीच में बोलते हैं, और दूसरी बात है कतई कलामी शुरू कर देते हैं जो कि आपने नहीं करनी। तीसरी बात है, जब आपको जवाब देना पड़े ना तो आहिस्ता से बात कीजिए। बस दफ़ा हम अपने डिफेंसिव हो जाते हैं कि वकीलाना अंदाज इख्तियार करते हैं और ऊंची बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ऑफेंड वो होते हैं जब कोई ऐसी बात कहे जो हमने ना की हो और हमें बर्दाश्त करना मुहाल हो रहा होता है। और चौथी बात है, अख़लाक से पेश आइए। ये मर्दाने हुर यानी आज़ाद मर्दों के तमगे हैं। क्या पता चला कि जो जवान लोग होते हैं ना, जो यंग होते हैं, जो वाकई ग़ुलाम नहीं होते, आज़ाद होते हैं ना, उनके अंदर ये खूबियाँ होती हैं। बात को ढंग से सुनिए, कतई कलामी ना कीजिए, आहिस्ता से गुफ्तगू कीजिए और अख़लाक से पेश आइए। इतने बड़े बड़े राज हमारे ऊपर खुल रहे हैं, अल्लाह करे कि हम खुशियों को पा लें। नेक्स्ट लीजिए, तुम्हारे पास दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो टांगें और एक जुबान है। ईमान कुरान और अमान है, फिर इंसान शुक्र क्यों नहीं करते? फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने रब की नेमतें कब तक झुटलाते रहोगे? तो आपने इस पे एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। ऐसी दो आंखें बना लें, दो कान बना लीजिए हल्की सी शेप के साथ, दो हाथ दो टांगे। अब अपने दो दो चार, दो छः, दो आठ हो गए ये। फिर एक ज़ुबान लंबी सी बना लें, जो एक भी होके बहुत है। अब इस ज़ुबान और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए तीन चीज़ें लिख लें, ईमान कुरान और अमान। यानी आप ईमान लाए अल्लाह पे, कुरान आपने समझना शुरू किया, और आप अल्लाह की अमान में, आपके ऊपर कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है, यानी आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। तो फिर इसके बाद और क्या नेमत चाहिए? अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अलम यजअल लहू ऐनैन वलिसानम वशफ़तैन वहदैनाहु नजदैन। क्या हमने तुम्हें दो आंखें नहीं दी, एक जुबान और दो होंठ नहीं दिए? तो इंसान अपनी नेमतों का सही इस्तेमाल करे। चलिए अगला रास लेते हैं। तुम पैरों पर चल रहे हो जबकि कितने ही पैर कटे हुए होंगे, टांगों पर खड़े होते हो जबकि कितनी ही टांगें टूटी होती हैं, तुम सोते हो, तुम्हारे अलावा कितने हैं जिन्हें नींद भी नहीं आती, तुम पेट भर कर खाते हो, कितने हैं जो भूखे हैं। तकाबुल कीजिए ज़रा। पाँव हैं आपके मेरे? अल्हम्दुलिल्लाह। टांगे हैं? खड़ा होना चाहूँ तो खड़ी हो जाऊंगी, सोती हूँ तो नींद आ जाती है, पेट में भूख हो कुछ खाऊं तो पेट भर जाता है। अब मुझे बताइए कि आपसे ज्यादा भी कोई नियमतों में हो सकता है? हम सब अपनी जिंदगी में अगर इन चीजों को गौर करने लग जाएं तो यकीन करेंगे कि हमारी जिंदगी वैसी न रहे जैसी इस वक्त हमने समझी हुई है। तो आज के बाद शिकवे छोड़िए, शुक्र कीजिए। अल्लाह ने आपको मुझे जो नेमतें दी हैं ना, इनको पाने का राज ही ये है कि हम शुक्र करें। चलिए एक और राज देखें, उसमें आपको और भी कुछ नेमतें दिखेंगी। तुम बहरेपन, गूंगेपन और नाबीनाई से महफूज हो। यानी ना हम गूंगे हैं, ना बहरे हैं, ना अंधे हैं, ऐसे ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सुमन बुक मनोमयन वाली कैफियत तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बर्स जुनून और जुजाम से भरी हैं, यानी हमें स्किन डिजीज़ भी नहीं है बर्स की सूरत में, और ना हम जुनूनी हैं यानी दीवानगी भी नहीं है, और जुजाम फिर एक स्किन डिजीज़ है, ये तीन बीमारियां भी नहीं हैं। इसी तरह सिल और कैंसर से आफियत में हो, यानी बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं हैं। तो क्या रहमान का शुक्र अदा करते हो? आज के बाद अब जब भी सैड हों, दुखी हों, ना खुश हों, तो ये सारे जुमले आपने दोहराने हैं, मेरे पांव सलामत, मेरी टांगे सलामत, मुझे नींद भी आती है ठीक, मैं बहरी भी नहीं, मैं गूंगी भी नहीं, मैं अंधी भी नहीं, ना मेरे स्किन पे बर्स है, ना मुझे जुनून लाहक है, ना मुझे जुसाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर से भी आफियत में हूँ। तो इससे बढ़कर फिर और खुशी की, आप देखेंगे रिलैक्स हो जाएंगे आप, एकदम आपके अंदर खुशी आएगी। ये बिल्कुल ऐसे कि हमारे घर में चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन हम उन चीज़ों को जानते ही नहीं, वक्त पे याद ही नहीं आती, बाद में कहते अरे ये तो घर में पड़ी थी, अरे फलां वक्त मेहमान को चाहिए थी लेकिन उस वक्त तो मुझे याद ही नहीं था, और बेचारे को चाय नहीं पिलाई, आप समझ लेते चाय की पत्ती ख़त्म हो गई। वैसे हमारे घरों में तो ऐसा बहुत ही कम होता है, ढेरों ढेर चीज़ें माशाल्लाह रखी होती हैं, लेकिन कभी बहुत ही अफसोस होगा जब आप वक्त पे समझे कि चीज़ नहीं है लेकिन बाद में वो घर से मिल जाए। चलिए एक और सीक्रेट, हमारी मुश्किल ये है कि हाजिर से आजिज़ हैं, माजी में जीते हैं, आज के दिन काम नहीं करते, कल की फिक्र में लगे हैं, ये अक्ल व हिकमत तो नहीं है। आप इसमें से एक एक चीज़ अपने लिए ले, क्या मैं अपने आज हाजिर से आजिज़ हूँ? हाय लॉकडाउन, हाय लॉकडाउन, हाय कब जाएंगे, हाय घर कब जाएंगे, हाय बाजार कब खुलेंगे, हाय फ्लाइट्स कब खुलेंगी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय धूप। यानी आप जहाँ भी बैठे ना इस वक्त अपने आजकल के जो दिन है उसको सामने लाके आजिज़ हैं। अच्छा एक माँ मिली बच्चों वाली, हाय बड़ा तंग करता, हाय बड़ा भी करता तब तो छोटा भी हो गया। इस तरह वो बच्ची बोल रही थी कि मुझे खौफ आया कि अल्लाह कहता लाओ मैं एक नहीं मैं दोनों ही ले जाता हूँ, फिर क्या करोगे ना, शुक्र बन ये सोता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं। और उनके मुंह से एक जुमला सुन के तो मैं लरस गई कि अगर अब दोबारा ज़रा लॉकडाउन हुआ तो मैं मर जाऊंगी। यानी उन्होंने बददुआई अंदाज में खुद को कहा। मैंने कहा क्यों, कहती ये बच्चा घर रहेगा मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा इस्तग़फ़ार कीजिए पहले, फ़ौरन आपकी बात अगर अल्लाह ने सुन ली तो ये हो जाएगा। मतलब ये था कि स्कूल खुले और बच्चा घर से स्कूल जाए, अपना बच्चा किसी गैर का तो नहीं है, और आप बच्चों की नेमतों को इस तरह ले रहे हैं। करते क्या बेचारे, अपने आप पाँव पे चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये ओवर रिएक्ट करना होता है, हाय थक गए, हाय घर रह के थक गए, हाय हाय। अच्छा माजी में जीते हैं, पिछला याद करेंगे, अम्मा के घर ऐसा था, हमारी नानी ऐसी थी, हमारी दादी ऐसी थी, बाप के घर मैं कितनी खुश थी, शादी से पहले मैं कितनी अच्छी थी, बच्चों से पहले मैं कैसी थी, और आज के दिन काम नहीं करते, कल की फिक्र में लगे हैं, तो ये अकल और हिकमत नहीं है, अल्लाह में हिकमत दे दे। फिर नेक्स्ट कहे कि लोग तुम पर तनकीद करते हैं तो इसका मतलब है कि तुम जिक्र के लायक हो। देखिए ना काबिले जिक्र चीज़ों के ऊपर ही तनकीद होती है ना, कोई बेकार चीज़ पे तनकीद क्यों करे, पागल है वो कहेगा ये तो सारी ख़राब है, अच्छी चीज़ों पे तनकीद होती है। तुम इल्म, बसीरत, माल या मनसब या ओहदे में इनसे बड़े हुए हो। याद रखिएगा आप पे तनकीद अमूमन दो ही लोग करते हैं, एक जिनसे आप आगे बढ़ चुके होते हैं और वो आगे आ नहीं पा रहे, मसलन अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल लीजिए, तो वो चूँकि ख़ुद वहाँ नहीं गए, वो कहते हैं ना थू कड़वा, उनको मिल नहीं रहा तो वो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हो सकता है आपको अल्लाह ने माल दे दिया, मनसब दे दिया, ओहदा दे दिया, इल्म बसीरत दूसरों से ज़्यादा दी, तो तनकीद ही तनकीद, तनकीद ही तनकीद। तो ये तो वो होते हैं जो हासिदीन की जद में आ जाते हैं तनकीद करते हुए। दूसरी किस्म के वो लोग आप पे तनकीद करते हैं जो वाकई आपसे आगे होते हैं, रियल में होते हैं, और आपको आगे लाना नहीं चाहते, वो अपनी इल्मी बड़ाई, अपने उस्ताद होने, अपने लीडर होने, अपने बड़े होने के किसी भी नाम को इख्तियार करके आपको कहते ना 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 आप अभी नहीं ये कर सकती, नहीं आप में अभी इतनी अकल नहीं है। मतलब बात शौहर बीवियों को कहेंगे बस बस आपसे ये नहीं होगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, बस आपको काम सिखाने वाले लोगों के, नहीं नहीं आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मुराद ये था कि आप ज़रा सा हमारे अंडर ही रहें तो बेहतर है। तो याद रखिए अगर आप पर कोई सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करे तो उस वक्त आप सोच लीजिएगा इस बात को कि मेरे ऊपर तनकीद हो इसलिए रही है कि मैं काबिले जिक्र हूँ। फिर अगली चीज़ लीजिए कि दूसरों की शख्सियत इख्तियार करना अपने आप को लोगों की नकल में जायल कर देना है, खुदकुशी है, और अपनी शख्सियत की पहचान को मिटा डालना है। जी बहुत बड़ी बात है, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हम दूसरों जैसे नहीं बन सकते, हम दूसरों को कॉपी करेंगे ना तो उनको तो वो चीज़ अच्छी लगी थी, जची थी, आपको मुझे नहीं अच्छी लगेगी। आप देखेंगी कि कई चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको आप महसूस करेंगी ना तो आप फील कर रही होंगी इस चीज़ को कि दूसरे लोग ख्वाम ख्वाम में आपकी कॉपी कर रहे हैं और खप रहे हैं। क्या फ़ायदा उसी काम को करने का जो पहले ही को कर चुका है। हल्की फुल्की चेंजेस कर दो, अच्छा बिल्कुल यही चाहिए, ऐसे चाहिए, डिज़ाइन भी ऐसा ही चाहिए, ऑडियो भी ऐसी हो, वीडियो भी हो, लोगो भी ऐसा हो, बस पता ना लगे कि मैंने उनका चोरी किया। चोरी ना भी गई है ना, कॉपी तो की है ना, तो आप वही ले लीजिए। याद रखिए, अपनी स्किल्स को यूज़ ना करना और दूसरों की चीज़ों को वो रेप्लिका करके बनाना, उसमें आपको खुशी नहीं मिलती, ये खुदकुशी होती है। आप अपनी शख्सियत की पहचान को मिटा देते हैं, आप असल में कन्फेस करते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, हम दूसरों की कॉपी कर सकते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट लीजिए कि सब अपना मशरब जानते हैं, कुरान में ये लफ्ज़ है, हर एक का एक तरीका है, ये भी कुरान में है आयत, कान के कच्चे ना बनो, ये भी है, दो किस्म के पौधे हैं जिन्हें एक ही पानी दिया जा रहा है। अब आप इसको कैसे समझेंगे अगर आपका कुरान से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कुरान में आयतें जब आती हैं तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें सामने आ जाती हैं। मतलब ये है कि इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ों में खोया रहता है कि जिसमें उसको वाकई समझ नहीं आती कि मैं किधर हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लम को लोग कहते थे ये कान के कच्चे, क्योंकि आप बड़े इजी गोइंग थे, हर एक की बात सुनते और बज़ाहर हाँ में हाँ भी मिलाते कि अब इसको क्या शर्मिंदा करना है। तो लोग कहते कि जी माशाल्लाह ये तो ऐसे हैं तो ये वैसे हैं, इनकी क्या बात है, इनको तो जिधर भी लगाएंगे ये लग जाएंगे। सब अपना मशरब जानते हैं, दुनिया में अल्लाह ने हर बंदे को ये समझ और अकल दी है, पानी कहाँ से पीना है, हर एक का एक तरीका है। तो असल बात जो ये ना कि दो किस्म के पौधे हैं, पानी एक ही दिया जा रहा है, कुरान में आयत है, इस सारी बात का जो मजमुआ बनता है ना वो ये बनता है कि आपको अपनी किस्म पहचाननी है, आपकी स्किल्स क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, अल्लाह ने आपको क्या कुछ दिया है उसको लेकर काम कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि आंसू के साथ मुस्कुराहट है, तकलीफ़ के साथ खुशी भी है, बला के साथ अतिया है, आजमाइश में इनाम भी है, ये अल्लाह की सुन्नत और उसका कायदा है, यानी ये साथ रहेगा। आप देखिए बहुत भी कोई हंसता है ना तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, बच्चों को देखा करे एक तो रोते हैं ना, पहले आंसू गिरते हैं फिर मुस्कुराएं तो साथ मुस्कुराने भी लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखा करें, जरा सा माँ इधर गई तो वो रोने लगे और माँ को देखकर साथ मुस्कुराने भी लगते हैं, यानी आंसू और मुस्कुराहट साथ साथ, तकलीफ के साथ खुशी है। अच्छी खासी घर की कैफियत होती है, एकदम तकलीफ आ जाती है, तकलीफ होती है तो एकदम एक खुशी की खबर मिलती है, कोई बला टूटी तो अतिये भी मिल जाते हैं साथ ही, आजमाइशों में इनाम भी है, तो तिल कल यामुदावेलुहा बैनन्नास और फाइन्ना माल उसरी युसरा। तो कभी ना घबराएं, जिंदगी में पॉजिटिव हों, बुरे से बुरे हालात में भी कहिए कि बस उम्मीद की किरण रोशन हो रही है और अल्लाह ने मेरे लिए बस आजमाइश से निकलने का वक्त करीब कर दिया है। आप देखेंगे कि आप मुस्तकिल इबादत की कैफियत में होंगे। फिर अगला राज लीजिए कि देखो हर तरफ मुबतलाए मुसीबत और आफत ज़दा ही नज़र आएंगे, हर घर में आहो बुका है यानी रो धो रहे हैं लोग, हर रुखसार पर आंसू है, हर वादी में बनू साद मातम कुना है। बनू साद कबीला था, आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लम की रज़ाई माँ भी इसी कबीले से थी, तो अमूमन उस कबीले के लोग मातम बहुत करते थे। मुराद क्या है, दूसरों को देखिए, उनकी मुसीबतें और तकलीफ़ें आपको आपके गम और दुख तकलीफ़ें कम कर देंगी, ये कहा करें कि अल्लाह तूने मुझे सबसे अच्छा रखा, अल्लाह तूने मुझे सबसे अच्छा खिलाया, अल्लाह तूने मुझे सबसे अच्छा पहनाया, ए मालिक तू मेरे साथ बहुत ही मेहरबान है, और इस तरह की बातें। फिर अगली चीज़ लीजिए, तुम्हारे एहसान के शुक्रिया की आवाज़ चिड़ियों के चहचहाने से ज़्यादा भली, नसीमे सहर से ज़्यादा अच्छी, और दरख्तों की सरसराहट और मौसीकी के सुरों से ज़्यादा दिलकश है। बहुत प्यारी बात है, यानी किसी ने आप पर एहसान किया तो उसको कहिए शुक्रिया, बारकल्ला, जजाकुमुल्लाह खैर, शुक्रन, जो भी नाम लीजिए, थैंक यू बोल दें, थक बोल दें, कुछ भी बोल दें, ये आवाज़ सारी खूबसूरत आवाज़ों से प्यारी आवाज़ है, और अमूमन हम यही नहीं बोलते, हम कहते लोग करना नहीं था, कोई एहसान किया, मतलब अगर माँ बाप कुछ करते तो हम कहते हैं हाँ पैदा जो किया तो करना नहीं था फिर इन्होंने, शौहर बेचारे कुछ कर दें तो हम कहते हैं लो इनका फ़र्ज़ है, कवाम है, ये बच्चे कुछ कर दें तो कहते हैं लो हमने नहीं इनके लिए किया, बहू बेचारी कोई खिदमत कर दे कहते हैं हमने भी अपनी सास की बड़ी बातें सुनी है, यानी लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर पाते हम, हालांकि अल्लाह को ये आवाज़ सबसे प्यारी लगती है। तो दिल से कहिए हर एक को सोच कर जिसने आपको कभी कुछ दिया कि जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया अदा किया करें, क्योंकि वमन लम यशकुर नासा लम यशकुर इल्ला। आज के बाद अपने अमल में रखिए, देखिएगा आपको खुशी का एक ऐसा राज मिल गया कि आप इसके बाद ना चाहते हुए भी खुद को खुश महसूस करेंगे। फिर अगला है गर्म पानी पीकर कुल्फत से, यानी अच्छा नहीं लगता, मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो। जब ठंडा पानी पियोगे ना तो तुम्हारे जिस्म का एक एक उज़्व बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ गए, यानी गर्म पानी पीने में एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, मुश्किल लगेगी आपको, मुश्किल में कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जब ठंडे पानी की नेमत मिलेगी ना तो आपका हर उस जिस्म का अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से पुकारेगा अल्लाह अकबर। और नेक्स्ट तरके लायानी, यानी लाशानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, बेकार चीज़ें जिसका कोई मकसद नहीं, आकिलों के नज़दीक सबसे सस्ता सौदा। दुनिया में सबसे कीमती सौदा ये है कि लोग तुमसे मानूस हों, तुम लोगों से मानूस हो। क्या पता चला, हर उस चीज़ को छोड़ दीजिए जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप अक्लमंद है तो बड़े आराम से छोड़ देंगे कि ठीक है मैं नहीं करती। असल बात क्या है कि आप लोगों से मानूस हो, लोग आपसे मानूस हों, यानी लोगों के साथ मामला अच्छा रखिए, मुराद ये है। और जो लोगों से मोहब्बत करता है, लोगों से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप देखिएगा कि वो बेकार चीज़ों में एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर नहीं करते। फिर इसी तरह के रंजो फिक्र से इज्तनाब करो, क्योंकि इसमें जहर है। अज्स मौत है, यानी आजिज हो जाना किसी अच्छी चीज़ से। कसल यानी सुस्ती नाकामी है। इज़्तराब राय सुए तदबीर है। क्या पता चला, आप जितना दुखी रहेंगे ना तो जहर है आपके पास वो। जैसे जहर से आप इज्तनाब करते हैं ना, जरा रंज और तकलीफ से भी इज्तनाब करें, यानी डोंट बी सैड, दुखी ना रहिए। और आप कहते नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं बहुत आजीज हूँ। देखिए अज क्या होता है असल में, आई कैंट, इम्पॉसिबल, वेरी हार्ड, आई कैंट, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे लिए ये नामुमकिन है, ये अज्ज है। ये कैसे हो सकता है, देखिए कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे ही जैसा बंदा ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो किसी भी अच्छी चीज़ से पीछे रहना असल में मौत है। और अक्सर लोगों की वजह सुस्ती होती है, कसल नाकामी है। मैंने सुस्त लोगों को कभी भी कामयाब होते नहीं देखा। ये अलग बात है कि वो कभी कभी जोश में आके कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। सुस्त लोग शिकवे ही करते रहते हैं और दूसरों से तकाबुल ही करते हैं, और आप 5 साल बाद उनको मिलें वो वैसे ही होते हैं, आप 10 साल बाद मिलें तो भी वो ऐसे ही होते हैं। और इस तरह राय सुए तदबीर है, यानी आप कोई ऐसी राय देते हैं किसी को जिसमें इज्तराब भरा हुआ, शक में भरी हुई बात, तो दूसरों को आप समझें कि बुरी तदबीर दे रहे हैं। बात करें तो स्ट्रांग, मंझी हुई, कोई बात आपसे पूछे ऐसी क्लैरिटी से बात करें, हाँ हाँ ये भी ठीक वो भी ठीक, फिर आप देख लीजिए, नहीं कूलू कौलन सदीदा। फिर नेक्स्ट लिखिएगा कि बुरे हम नशीन से अच्छा है अकेला रहना, अल्लाह करे कि हमें बुरी दोस्तियों से छूट मिल जाए। नेकी का काम करना बुलंदो बाला महलों से बेहतर है, यानी आपको बहुत बड़ा कैसल मिल जाए ना, उसको एक पलड़े में डालिए और दूसरी तरफ नेकी का काम करना। बताइए मुझे, आप किसको कामयाब कहते हैं, महल वाले को कि नेकी करने वाले को? और नेक नामी के साथ तारुफ हो जाए आपका, ये बड़ा रुतबा है, यानी लोग आपको किसी अच्छे नाम से जोड़ने लग जाए, आपकी अच्छी शोहरत हो, नेक नामी, बड़ी अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं, ये बहुत अच्छे काम करती हैं, तो ये तारुफ आपका सबसे बड़ा रुतबा है। लोगों को वजारत सदारत की कुर्सी मिल जाती है लेकिन नाम नहीं अच्छा रहता एंड पे। अमूमन आप अच्छे काम कीजिए, लोगों में आपकी अच्छी शोहरत हो, और पूछिए भी मेरे इर्द गिर्द वाले मेरे बारे में अक्सर क्या कहते होंगे, क्या लोग मुझे बाइज्जत समझते हैं या महरूम समझते हैं। फिर जिसका रहनुमा दीन हो, अकल राहबर हो, हसब मुहाफिज हो, हया जीनत देती हो, तो इसके पास तमाम फजाइल जमा है। अभी दोहराती हूँ, पहली बात लिखिए कि रहनुमा कौन है आपका, दीन, यानी आप दीन की रहनुमाई में चल फिर रहे हैं। राह आपको कौन दिखाता है, यानी गाइड कौन है आपका, अकल, यानी अकल अकले सलीम है। हसब आपका बड़ा प्यारा है, कोई जिना बदकारी फहाशी और यानी आपके खानदान के करीब नहीं गुजरी, तो मुहाफिज है आपका हसब। और हया है आपके अंदर, तो आप तो जीनतदार हैं, तो आपको तो फिर सब कुछ मिल गया। और ये चीज़ें ज़्यादा लोगों को नहीं मिलती, कुछ को मिलती हैं कुछ को नहीं मिलती। आपने मैंने क्या करना है, इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेना है और इसको अपनी ज़िंदगी का खुलासा बना ले, कोड वर्ड बना ले। और इसी तरह से जो इख्तलाफ को तर्क कर दे, کسی سے بھی اختلاف ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے، اختلافی بات کو چھوڑ دیجئے، تفاخر سے بچے یعنی ایک دوسرے پہ فخر ہی جتلا رہے ہیں، جھوٹ سے محفوظ رہے، تقدیر پر راضی ہو، حسد کو چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے اپنی مخلوق کے دل میں جگہ بنا دیتا ہے۔ کتنی پیاری باتیں، آپ دیکھیے ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے اور اپنے لیے بھی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم اپنے اندر یہ سب کچھ لے کر چلیں، اور جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کا اپنی زندگی میں جگہ دیں گے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ آپ سے پیار کرنے لگ گئے۔ لوگوں کی محبت پانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے۔ کس صورت میں رہنا ہے؟ یہ سب کام کر کے۔ اختلافات کو چھوڑ دیجئے، یہ چھوٹ جائیں گے۔ ایک دن آنکھ بند ہونی ہے سب کی، اور اس دن سب ختم۔ فخر کس بات کا؟ وہ بندہ جو دن میں ایک دو بار واش روم میں جائے، اپنی گندگی صاف کرے، وہ کس بات پہ فخر کرے؟ اور جھوٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اپنی تقدیر پہ راضی رہیے، حسد کو چھوڑیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنی محبتیں جوڑ دیتے ہیں۔ آپ سے سنبھلے گی نہیں وہ محبت جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو دولت دے دی وہ کسی اور کو ملی ہی نہیں۔ اور پھر آخری بات، اور وہ کیا ہے کہ جو سلطان کا، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کا، جو بادشاہ کے ساتھ رہے گا، یعنی جو سلطان کا استخفاف کرے گا اس کی دنیا چلی جائے گی، جو دوست کا استخفاف کرے گا اس کی مروت ختم ہوگی، اور جو اللہ کا استخفاف کرے گا اس کی دنیا اور آخرت برباد ہوگی۔ اب یہ لفظ استخفاف کیا ہے؟ الف سین تا ہوتا ہے ٹو سیک، طلب کرنا، ٹھیک ہے، جیسے استغاثہ اور استحقاق۔ خفاف کیا ہے؟ خافا، کم کرنا، یعنی جو بادشاہ کا حق نہیں تسلیم کرے گا یا اس کی عزت نہیں کرے گا تو بادشاہ اس کی دنیا بگاڑ دے گا، یعنی بادشاہ اس کا دشمن ہو جائے گا۔ اور جو دوست کا استخفاف کرے گا تو اس کی مروت کیسے ختم ہوگی؟ آپ دیکھیے کہ دوست کی بھی حق ہوتے ہیں نا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ استخفاف کا مطلب یہ کہ آپ دوستی میں آ کر اس کی عزت کم کرتے ہیں، اس سے بے تکلف ہوتے ہیں، تو پھر مروت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو اللہ کا حق نہ دے گا تو اس کی تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہوں گی۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کو آپ نے میں نے ہی استعمال کرنا ہے۔ یہ چند سیکرٹس تھے خوش رہنے کے راستے۔ اگر ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہم جذب کرتے رہ گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شان ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر کو لینے اور دینے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔